بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد كتاب الذبائح اور شکار سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر کی جا رہی تھی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاضاحی یعنی قربانی سے متعلق ہی ابواب قائم فرمائے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے. ابھی ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے اور شام میں ہو سکتا ہے کہ ابھی چاند نظر آ جائے یا چند گھنٹوں کے بعد نظر آ گیا ہے. ماشاء اللہ یہ مہینہ مبارک ہوا حضرات کا. تو اس سے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہوا موقع کی مناسبت سے. بعض احکام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے سے متعلق ذکر فرمائے ہیں. خاص طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا تو تقریباً 10 احکام احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں. ہم دو چار ذکر کرتے ہیں آپس میں, لیکن اگر گنا جائے دیکھا جائے تقریباً 10 احکام ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں سے متعلق ہیں. ہر حکم کے تحت میں پھر کئی تفصیلات ہیں, کئی مسائل ہیں, کئی جزئیات ہیں. سب سے پہلا حکم یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال کو اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے. یہ حکم دیا گیا. کیوں دیا گیا, کیا حکمتیں ہیں, کیا مصلحتیں ہیں, علماء نے بیان فرمائی ہیں. ایک جو عام طور پر مناسبت یا ذکر کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ حاجیوں کی مشابہت میں شریعت کا یہ حکم دیا گیا کہ وہ احرام کی پابندی میں ہوتے ہیں, بال ناخن ان کے لیے کاٹنا منع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور پراگندہ حال بھی ہوتے ہیں, پراگندہ بال بھی ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, منا رہے ہوتے ہیں. جب 10 ذوالحجہ ہوتی ہے تو اللہ کو منانے کے لیے جو سب سے بڑا حکم ہوتا ہے وہ جان کے نذرانے کے پیش کرنے کا ہوتا ہے, جان کی قربانی دینے کا ہوتا ہے. تو وہ بھی کر گزرتے ہیں اور عملی طور پر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے لیے جان بھی دینی پڑے تو جان دے دینا چاہیے, کیونکہ اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے, اور اس حکم کی اطاعت ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اپنی قربانی آدمی دے دیتا ہے, آسان ہے دینا, لیکن اولاد کی قربانی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی قربانی مانگی ہے جو اس کو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. اپنی جان تو جو ہے نا جوکھم میں ڈال دے گا بڑی آسانی کے ساتھ, میں مر جاؤں گا لیکن مجھے میرے بیوی بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک فکر ہی ایک جذبہ ہوتا ہے ہر آدمی کا, وہ سکون سے رہے. ان کے سکون کے خاطر آدمی محنت بھی کرتا ہے, مشقت بھی اٹھاتا ہے, تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عزیز چیز جو ہوتی ہے اسی کی قربانی مانگی ہے کہ بندہ کیا میری راہ میں اور میرے حکم کی خاطر اپنی اولاد کی قربانی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, پھر اللہ نے ان کی سنت کو پھر بدل کے طور پر اس امت میں جاری فرما دیا, ورنہ پھر ہماری بھی کبھی نہ کبھی باری آ جاتی. اگر بھی آئی نہیں وہی سنت جاری ہوتی. تو حاجیوں کی مشابہت میں یہ حکم ہے کہ بال کو اور ناخن کو نہ کاٹا جائے. سب سے پہلا حکم یہی ہے, اور یہ حکم صرف مستحب ہے, یعنی عمل کریں تو ثواب ہے اس کے اوپر مستحب کا, لیکن یہ مطلب ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. یہ درجہ بندیاں جو ہے نا دلائل کے اعتبار سے ہوتی ہیں, امت کی آسانی کے لیے درجہ بندی ہے, ورنہ تو کوئی بھی عمل چاہے مستحب ہو, چاہے سنت ہو, چاہے فرض ہو, چاہے واجب ہو, چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا. ہر عمل تو کرنے کے لیے ہوتا ہے, तो मुस्तहब अमल का मतलब ये है कि अल्लाह की नज़र में और अल्लाह के रसूल की नज़र में पसंदीदा अमल है। अब कोई उम्मती हो और ये सोचे कि भाई नबी का पसंदीदा अमल है इसलिए मैं छोड़ूँ, अल्लाह का पसंदीदा अमल है इसलिए छोड़ूँ, ज़ाहिर सी बात है कि तसव्वुर भी नहीं हो सकता, करना चाहिए ज़रूर उसको ताकि अल्लाह भी राज़ी हो अल्लाह के रसूल भी राज़ी हो। तो इसलिए जो हजरत कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं उनके लिए हुक्म यह है कि अपने बालों को और अपने नाखूनों को साफ़ न करें ज़िलहिज्जा का चांद देखने के बाद। लेकिन अगर कोई कर ले तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इसी के तहत में एक मसला और भी है जो जुड़ा हुआ है, वो ये है कि अगर किसी आदमी की इतने दिन गुजर गए हैं बालों और नाखूनों को साफ़ किए बगैर कि इन 10 दिनों में अगर बाल और नाखून नहीं काटता है तो 40 दिन हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए बालों का छोड़े रखना इन दिनों में जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी उलमा ने उसको नाजायज़ करार दिया है। क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा अपने बालों को नाखूनों को साफ़ न करना शरीयत में इसकी मजम्मत है। फिर तो इसलिए पहले ही से जो है ना कोशिश कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी ने नहीं की है तो छोड़ न करें। लेकिन अगर 40 दिन गुजर रहे हों तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि अपने नाखूनों की और जिस्म के ज़ायद बालों की सफाई कर लें। तो एक हुक्म ज़िलहिज्जा का चांद देखने के बाद हमसे मुतालिक ये है। दूसरा हुक्म ये है कि ज़िलहिज्जा में दिन में रोज़ों के रखने का हुक्म है और रात में इबादत का हुक्म है। और बड़ी फजीलत इसकी है कि दिन के जो रोज़े हैं वो 1 साल इबादत का सवाब रखते हैं और रात में जो इबादत होती है वो शब कद्र के बराबर होती है सवाब के एतबार से। रमज़ान का जो महीना हमारे लिए होता है, आखिर एतकाफ़ के जो 10 दिन होते हैं हमारे लिए, इसी में गुजरते हैं कि एतकाफ़ शब कद्र मिली नहीं मिली, मिली नहीं मिली, कौन सी रात है, फलाएँ फलाएँ, ताक रातों में एहतमाम गैर ताक रातों में एहतमाम होता है। लेकिन ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में किसी ने एक रात भी अगर इबादत में गुजार ली है शब कद्र के बराबर सवाब उसके नामे अमाल में लिख दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह तबारक व ताला की मेहरबानी है। अब अगर किसी को 10 दिन इबादत करने की तौफीक मिल जाए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 10 शब कद्र उसके हिस्से में आ गए। बेइंतहा अल्लाह पाक की मेहरबानी है हमारे ऊपर। तो इसलिए ख़ास तौर पर उलमाए इकराम जो फरमाते हैं इस हवाले से कि भाई फजर की नमाज़ और ईशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए, आम तौर पर यह बात कही जाती है, वो यही है कि ईशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ने पर आधी रात इबादत का सवाब मिलता है, फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ने पर पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। तो दो नमाज़ें जमात के साथ हो गई तो पूरी रात इबादत का सवाब मिल गया, और कोई इन रातों में ख़ास तौर पर ऐसे अजीम मौाक़े पर अगर इबादत का अहतमाम कर ले पूरी रात तो अजर जो है ना बहुत ज़्यादा नामे अमाल में लिख दिया जाता है। तो कम अज़ कम गुनाहों से बचते हुए इसका अहतमाम करना चाहिए कि फजर और ईशा की नमाज़ जमात के साथ मस्जिद में अदा की जा सके। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इबादत का सवाब हमको मिल जाएगा। तो दिनों में ख़ास तौर पर रोज़ा रखने का अहतमाम किया जाए। 1 साल का रोज़ा रखना आसान नहीं है किसी के लिए भी, ख़ास तौर पर इस उम्मत में। पहले ज़माने में होते थे लोग, अल्लाह ने उनकी कुवा वैसे दी रखी थी, हिम्मतें उनकी बुलंद थी और उम्रें भी उनकी बड़ी थी। 500-500 साल की इबादत होती थी, 60-60, 70-70, 100-100 साल जो है ना एक साथ रोज़ा रखा करते थे। ऐसे भी इबादत गुजारों के वाक़यात मिलते हैं किताबों में। और यहाँ पर सिर्फ एक रोज़ा रखने पर अल्लाह याद रता फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला। तो इसलिए दिन में रोज़ा रखने का अहतमाम होना चाहिए और रात में इबादत करने का जो हो सकता हो मुमकिन तौर पर अहतमाम करना चाहिए। तीसरा हुक्म जो मुतालिक है वो ये है कि इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल का अहतमाम करना चाहिए आदमी को, क्योंकि साल में जो अय्याम हैं उनमें किया जाने वाला जो अमल अल्लाह की बारगाह में होता है उसका जो सवाब दिया जाता है वो अलग है, और इन 10 दिनों में जो अमाल का सवाब दिया जाता है उसकी हैसियत अलग है। फरमाया कि इन 10 दिनों में नेक अमल जो भी किया जाता है तो इनके अलावा किसी और दिन में किया जाने वाला अमल इतना ज़्यादा महबूब नहीं होता जो इन दिनों में होता है। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि इन 10 दिनों में ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल का अहतमाम करते रहना चाहिए। अजीब इसकी फजीलत है इन 10 दिनों की, अल्लाह तबारक व ताला ने क्या रखी है तरतीब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। सूरह वल फज्र में भी इन्हीं 10 रातों की कसम खाई गई है, वल फज्र वल लयाल नाशर व शफई वल वत्र। जहाँ अल्लाह पाक ने जो कसम खाई है तो वह ज़िलहिज्जा की 10 रातों ही की कसम फरमाई है, कसम खाई है। और बाद रिवायत में ये बात मिलती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह पाक ने जो 1 महीना रोज़ा रख कर गए थे तो 10 दिन जो बढ़ा दिए थे वो ज़िलहिज्जा के 10 दिन थे, जिन दिनों में 10 दिन जो है ना वो इजाफी रोज़ा रख कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे। फिर तो इनकी कस्में खाई है अल्लाह ने, इन 10 रातों की कस्में खाई है, इन 10 दिनों की अल्लाह ने कस्में खाई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन औकात की, जिन दिनों की, जिन रातों की अल्लाह पाक कसम खा रहे हैं वो औकात अल्लाह के नज़दीक कितने मोहतरम हैं। तो इसलिए نفل اعمال جو ہو سکتے ہیں وہ ضرور جو ہے نا ان میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، صدقات ہو، عبادات ہوں. اور اسی سے متعلق ایک حکم یہ بھی ہے کہ تسبیحات کا اہتمام خاص طور پر زیادہ کرنا چاہیے. حدیثوں میں معجم طبرانی میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان دنوں میں اللہ کے نزدیک نیک عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کے نزدیک ان دنوں میں زیادہ محبوب نہیں ہے کہ آدمی نیک عمل یہاں پر کرے. یعنی غیر مہینوں میں جہاد فی سبیل اللہ اگر کوئی کر رہا ہو تو ان کے عام دنوں میں جو ان 10 دنوں میں جو نیکی کا عمل کرتا ہے اس سے محبوب نہیں ہو سکتا ہو. اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں جہاد، جان کا نذرانہ پیش کر دینا آسان بات نہیں ہے. تو اس لیے تسبیحات کا بھی اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اس کی بھی ترغیب ہے. اکثر فیہن من التسبیح والتحمید والتحلیل، آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کے پڑھتے رہے، یعنی ان کو پڑھتے رہا کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ایک حکم جو متعلق ہوتا ہے ان 10 دنوں میں عرفے کے روزے کا ہے، جو ہم کو دیا گیا 9 ذی الحجہ کو جو ہے ایک دن روزہ رکھنا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. گزشتہ 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی ان عرفے کا روزہ رکھ لیا تو آئندہ 1 سال جینے کی گارنٹی ہے اس کی، کیونکہ گناہ تو اس کے بخش دیے گئے، زندہ نہیں رہے گا تو گناہ نہیں ہوں گے تو بخشش کس کی ہوگی پھر. تو اس لیے جو ہے عرفے کا روزہ اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو بعض علماء کا جو ہے نا یہ لطیفہ ہے، اس کے تحت میں ایک نقطہ ہے کہ بھائی انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ 1 سال کی گارنٹی اس کی ہے کہ مرے گا نہیں. تو اس لیے اس دن میں اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر. حدیثوں میں ہے کہ شیطان کی رسوائی جو ہے نا عرفے میں جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ کہیں نہیں ہوتی. جتنا ذلیل شیطان عرفے کے دن ہوتا ہے اور ہوا ہے، اتنا زیادہ ذلیل کسی اور دن نہیں ہوتا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عمومی رحمت اور مغفرت اتنی زیادہ اس دن ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے. اور اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ہر ملک کے اعتبار سے جو ہے نا ایام اور اوقات اور تاریخات ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ بھائی سعودی میں چاند نظر آ گیا تو سعودی میں جو عرفے کا دن ہے یہاں پر بھی وہی، اب تو چل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ سعودی میں چاند اگر نظر آ گیا جہاں عرفہ ہو گئی تو ہندوستان میں بھی عرفہ ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی عرفہ ہو رہی ہے، اور بھی مقامات پر عرفہ ہو رہی ہے. یعنی روزہ رکھ رہے ہیں لوگ، عبادت، پوری عبادتیں لوگ ضائع کر رہے ہیں، بیوقوفی اور نادانی ہے. پتہ نہیں یہ حکم کہاں سے نکلا، کیسے نکلا کہ بھائی سعودیہ کو فالو کیا جائے. نہ قرآن و سنت میں اس کی ترغیب ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی نہ اشارہ ملتا ہے اس طرح کا. اصول یہ اگر دیکھا جائے سعودیہ سے پہلے بھی نیوزی لینڈ، نیدر لینڈ وغیرہ کے اس طرح کے جو مقامات ہیں وہ تو 8-8, 10-10 گھنٹے آگے ہیں، چاند تو وہاں پہلے نظر آتا ہے. تو اتباع اگر کرنی چاہیے تو وہاں کی نہیں، وہاں کی جانی چاہیے پھر جہاں چاند پہلے نظر آ رہا ہے. اگر سعودیہ ہی کی اتباع کرنی ہے تو پھر وہ لوگ کیا کریں، انتظار کریں چاند نظر آنے کے بعد 8 گھنٹے 10 گھنٹے یا 1 دن کا. بقیہ حدیثوں سے بھی جس بات کی تائید ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جو صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کہ وہاں پر چاند ان لوگوں نے دیکھ لیا ملک شام میں، یہاں پر آ گئے، پوچھا کہ بھائی روزہ کب رکھا تو ان لوگوں نے چاند کب دیکھا تو فرمایا کہ جمعے کے دن. تو کہا کہ ہم لوگوں نے ہفتے کے دن دیکھا اور ہفتے کے دن ہی سے جو ہے نا ہم لوگ یعنی ہم اس کا اعتبار کریں گے، جمعے کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم کو یہی حکم دیا ہے. تو حدیث ابن عباس نے یہ شریف فتویٰ سنا دیا اور فیصلہ دے دیا کہ چاند کی رویت ہر جگہ کے اعتبار سے الگ الگ ہوگی. ملک شام والوں نے اپنا چاند دیکھا، اپنے اعتبار سے عبادت ان لوگوں نے ادا کر لی، اس کے وہ مکلف ہیں. اب یہاں پر مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں ہم یہاں چاند دیکھیں گے تو یہاں کے اعتبار سے ہم جو ہے نا عبادت انجام دیں گے. یہ نہیں کہ بھائی وہاں رویت ہو گئی تو پھر یہاں بھی اس کا اعتبار کریں گے. اگر اس کی تفصیلات الگ ہیں تو مسئلہ یہی ہے کہ قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہے، قرآن و سنت سے جو قریب ہے، وہ یہی ہے کہ ہر جگہ ہر ملک والوں کے لیے ان کی اپنی رویت معتبر ہوتی ہے. ایک ملک کی رویت دوسری جگہ معتبر نہیں ہوگی، الا یہ کہ دونوں کا نظام اس طرح بنا ہوا، اوقات اس طرح کے ہوں کہ ایک کو عمل کرنے، ایک کو فالو کرنے سے جو ہے نا وہاں کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، دن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو پھر ان کی وہ اختلاف مطالعے کا مسئلہ آتا ہے، وہ ایک علمی بحث ہوتی ہے. وہ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بھائی یہاں والے عرفے کا جو روزہ رکھیں گے، عرفے کی جو عبادت انجام دیں گے، تو یہاں کے اپنے اعتبار سے چاند نظر آئے گا تو اس اعتبار سے ادا کریں گے. یہ نہیں کہ بھائی کہیں بھی چاند نظر آ گیا تو پھر اس کی اتباع کریں. عرفے میں پھر دوسرا حکم جو ہم سے متعلق ہوتا ہے وہ عرفے کی صبح سے تکبیرات تشریق کا ہے، کہ تکبیرات کہنے کا حکم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ان تکبیرات کے بارے میں ایک عام تصور یہ ہے کہ بھئی یہ صرف ان دنوں میں ہی پڑھنا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے جو ہے وہ 13 ذی الحجہ کے عصر تک جو ہے نا پڑھیں گے. ये तो पढ़ना उन दिनों में वाजिब है हमारे ऊपर, मर्द पर भी वाजिब है, औरत पर भी वाजिब है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि मुस्तहब ये है कि ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में भी इन तकबीरात का अहतमाम करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि उन्हीं 10 दिनों में करना है, उन्हीं 3 दिनों में 5 दिनों में करना है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। ये जो तस्बीहात पढ़ी जाएंगी ये आम 10 दिनों में पढ़ी जाएंगी, जैसे ही ज़िलहिज्जा शुरू हो गया तकबीरात का अहतमाम हो, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान हो, फिर अल्लाह की बड़ाई का इजहार हो, तो इसलिए ये पढ़ते रहना चाहिए नमाज़ों के बाद। अलबत्त वाजिब उस वक्त है कि वहाँ पर छोड़ने की गुंजाइश नहीं है फिर, और वो यही है, मर्दों पर भी वाजिब है, औरतों पर भी वाजिब है, सबके ऊपर ज़रूरी है कि कम अज़ कम एक मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद अदा करें। अलबत्त मर्दों पर जहरन पढ़ना वाजिब है और औरतों पर सिरन पढ़ना है। जहरन मतलब यह है कि मर्द बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। 3 मरतबा जो है वो सुन्नत नहीं है, एक मरतबा पढ़ना फ़र्ज है और उसी पर इक्तफा करना चाहिए। अच्छा, यहाँ हमारी आवाज़ नहीं निकलती, तकबीरात तशरीफ जो होती हैं, शरीयत का हुक्म यह है कि भाई आवाज़ बुलंद पढ़ा जाए, आदमी को यहाँ अपनी आवाज़ दिखानी चाहिए, यहाँ आवाज़ नहीं निकलती, आवाज़ निकलती है कहीं और मकाम पर, या जहाँ ज़ोर से आवाज़ निकालने का हुक्म है वहाँ नहीं निकलती है, जहाँ नहीं निकालने का हुक्म है वहाँ निकलती है हमारी आवाज़। उसके बाद जो हुक्म है ईद की रात का भी है, ईद की रात भी इबादत का हुक्म है, ईदुल्फ़ितर में भी और ईदुल्अज़हा में भी, कि जो रात अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम की रात होती है, ऐलान की रात होती है, वही रात हम गाफिल हो जाते हैं, और हमारे पास तो वो तो बिल्कुल यानी तफरी की रात होती है। मुस्त ईद की रात में बाहर चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं कि देखें कि क्या अहवाल हैं, बल्कि ये 10 दिन जो है ना इबादत करने के बजाय बकरा मंडी में घूमते रहते हैं। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो यही होता है कि भाई रोज़ाना एक नई नई जगह जाते हैं, जानवर देख कर आते हैं, बड़े जानवर कहाँ पर अच्छे हैं, छोटे जानवर कहाँ पर अच्छे हैं, किस जगह जानवर अच्छे कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये अमल, ये दिन जो है ना वो अमल करने के लिए, नेक अमल के लिए हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं है। और ईद की रातों में, ईदुल्फितर में भी उमूमन यही होता है कि तफरी के लिए निकल गया, मार्केट में देखना होता है, ख़रीदने वाले कम होते हैं, फिरने वाले ज़्यादा होते हैं और ईदुल अज़हा में भी वही है। या फिर बहुत से लोग अपनी शॉपिंग उठा कर रखते हैं आखिर दिन के लिए, जाएंगे उस दिन जाके करेंगे, फिर जाके ला लेंगे, ये अल्लाह तबारक व ताला से मांगने की रातें हैं। हदीसों में है कि जो आदमी 5 रातों में इबादत करेगा उनमें से ये भी है कि लैलतुल कद्र यानी ईद उल अज़हा में और ईद उल फित्र में इबादत करेगा, तो फरमाया गया कि उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सारे लोगों के दिल मर जाएंगे, अल्लाह पाक ज़िंदा रखेंगे दिलों को, जो इन रातों को ज़िंदा करेगा अल्लाह पाक उसके दिल को ज़िंदा कर देंगे, और जिस दिन सारे दिल मर जाएंगे तो उस दिन अल्लाह तबारक व ताला मरने से महफूज रखेंगे। बड़ी फजीलतें हैं, तो इसलिए ईद की रात में भी इबादत का अहतमाम होना चाहिए। ये नहीं, इबादत का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा ईशा की नमाज़ से मुसल्ले पे आ गए तो फजर तक उठ ही नहीं रहेंगे, मतलब नहीं है। आदमी हत्तल इमकान अपने तौर पर जो हो सकता हो इबादत करे, जिक्र अजकार में तिलावत में मशगूल रहे, नमाज बाजमात का अहतमाम करे, गुनाहों से बचे। ये असल चीज़ है कि आदमी गुनाहों से बचकर जो इबादत हमसे हो सकती है उतना अदा कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला को मनाने के लिए काफ़ी है वो। फिर उसके बाद दूसरा जो हुक्म हमसे मुताल्लिक होता है ईद के बाद, ईद की रात के बाद दूसरे दिन है, एक तो वही है कि ईद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, शुक्राने के तौर पर हम लोग अदा करते हैं, और एक हुक्म कुर्बानी से मुताल्लिक है, ज़िलहिज्जा को जो करने की है कुर्बानी का, कि साहिब इस्तात लोगों पर कुर्बानी ये ज़रूरी और फ़र्ज़ है। इसके मसाइल हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते या फिर जुमे में भी ये तफसीलात आएंगे। मैं इजमाली तौर पर जो अहकाम इन 10 दिनों में हैं उनसे मुताल्लिक थोड़ा सा मुज़ाकरा कर रहा हूँ। तो 10 ज़िलहिज्जा में जो एक तो ईद की नमाज़ अदा करने का हुक्म है, और ईद की नमाज़ के बाद कुर्बानी करने का हुक्म है कि साहिब इस्तात लोगों पर कुर्बानी ज़रूरी है, और यह कुर्बानी जो है ना हर साहिब इस्तात पर ज़रूरी है। यह कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से एक आदमी करेगा तो काफ़ी नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन मरद सातन फ़लम युदाही फ़ला यहदुर मुसल्लाना, जो कुर्बानी न करे कुर्बानी फ़र्ज़ होने के यानी कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद, कुर्बानी की गुंजाइश होने के बावजूद, तो फरमाया कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे मुसल्ला आने की ज़रूरत नहीं है उसको। फिर ये बड़ी वईद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद यानी उसको ईदगाह आने से मना फरमा रहे हैं कि ईदगाह ना आए, वो नमाज ही ना पढ़े हमारे साथ, वो इस काबिल नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए, कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहा है। वैसे भी जिन लोगों के नज़दीक कुर्बानी वाजिब नहीं है तरगीब देनी चाहिए, यहाँ उल्टा मसला है। ठीक है आपके नज़दीक कुर्बानी वाजिब नहीं है लेकिन कर लें तो बेहतर है ना, अगर आपके नज़दीक कुर्बानी वाजिब नहीं है करना तो बेहतर है। जो लोग जितनी अल्लाह के नबी ने तो 63 ऊँट कुर्बान किए हैं, जिस वक्त आपने कुर्बानी दी थी 63 ऊँटों की, और एक ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, 63 को आप 7 से ज़रब दे देंगे तो फिर कितने हिस्सों की कुर्बानी अल्लाह के नबी ने दी है, और हम एक कुर्बानी वो ये है कि भाई एक आदमी कई कई दे, या कम से कम हर आदमी जो है ना अपनी तरफ से अदा करे, इसकी तरगीब देने के बजाय करते ये हैं कि भाई एक काफ़ी है सबकी तरफ से, तो बकिया करने की ज़रूरत नहीं है, बकिया को करने से मना कर देते हैं कि ना करो। ये उल्टी खोपड़ी है, इन हजरात की समझ में नहीं आती बात। तो कुर्बानी हर आदमी पर ज़रूरी है, ये जो साहिब इस्तेआत है, जैसे नमाज हर एक पर ज़रूरी है, रोज़ा हर एक पर ज़रूरी है, हर 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 आदमी पर ज़रूरी होता है जो साहिब इस्तेआत होता है, तो इसी तरह कुर्बानी भी ज़रूरी होती है हर आदमी पर जो साहिब इस्तेआत हो। फिर उससे उसके बाद जो हुक्म है वो हज का है, इन 5 दिनों में ख़ास तौर पर 8 ज़िलहिज्जा से जो है हज का हुक्म है। 5 दिन हज के होते हैं, 8, 9, 10, 11 और 12। अब अगर कोई 12 के बाद ठहर गया तो 13 दिन जो है, 13वां दिन भी जो है ना उसका, यानी छठा दिन भी हज में उसका निकल जाता है। तो फिर हज के मुतालिक अहकाम उससे मुतालिक होते हैं। तो ये 10 दिन वो हैं जिनमें इजमाली तौर पर शरीयत के ये अहकाम हमसे मुतालिक हैं, जिनका एक खुलासा आप हजरात के सामने जिक्र किया गया है। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। इंशाल्लाह मौका होगा तो फिर आइंदा, एक तो जुमा का भी जुमा भी है, फिर आइंदा एक और मंगल भी हमारा आएगा, तो उसमें जो है ना बाद मसाइल से मुतालिक या कुर्बानी से मुतालिक मसाइल निस्बतन तफसील के साथ जिक्र किए जाएंगे। अल्लाह ताला शानहू सही है सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب